पृथ्वी और सूर्य का विवाद। पृथ्वी और सूर्य का विवाद। एक बार पृथ्वी और सूर्य में भारी विवाद छिड़ गया। सूर्य ने कहा, तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरी किरणों से ही अस्तित्व में है, मैं ना हूं तो तुम्हें कौन मानेगा, मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए तुम मेरी पूजा करो। सूर्य के इस अहंकार से पृथ्वी को बड़ी शुद्धता हुई। उसने कहा, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, मैं तुम्हारी किरणों से प्रकाशित हूं तो तुम्हारी किरणों के गुण भी मेरे ही कारण दृष्टिगत होते हैं, तुम प्राणी मात्र को जलाते हो, मैं उन्हें शीतलता और शांति प्रदान करती हूं, मैं तुमसे अधिक महान हूं क्योंकि मैं प्रेम की देवी हूं, तुम क्रोध और अहंकार के प्रतीक, इस जगत के सभी प्राणियों को मैं ही जन्म देती हूं और पालती हूं। मूर्ख, सूर्य ने हंसते हुए कहा, ईश्वर ने किसी के समान किसी को नहीं बनाया, मेरी किरणों का तेज तुम में न जाए तो तुम किसी प्राणी को जन्म नहीं दे सकती, बंजर उसर और नीरस बनकर रह जाओगी, तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी, इसी कारण तुम मेरे चारों ओर चक्राती फिरती हो। क्रोधित होकर पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाना बंद कर दिया। सूर्य ने भी पृथ्वी के अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी किरणों का तेज पृथ्वी पर फेंकना बंद कर दिया। इससे त्राही त्राही मच गई। नारद जी ने दोनों को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, नारायण नारायण, तुम दोनों के विवाद में सृष्टि का विनाश हो जाएगा, कोई प्राणी जन्म नहीं लेगा, जो जीवित है वो भी मृत हो जाएंगे, सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, पृथ्वी ने बिगड़कर कहा, इन प्राणियों को जन्म देने के लिए मैं अपने हृदय को विदीर्ण करती हूं, इन्हें अपने रक्त और प्रेम से सींच कर इनका भार वहन करती हूं और उस पर भी मेरी कोई महत्ता नहीं, अब मैं सूर्य की दासता नहीं करूंगी, ईश्वर को अपना नियम बदलना ही होगा, मैं सूर्य का चक्कर क्यों लगाऊं, वही मेरा चक्कर क्यों ना लगाए। देवी देवी, नारद ने घबराकर कहा, ईश्वर के नियम शाश्वत होते हैं, अग्नि प्रत्येक दशा में जलाती है, पानी प्रत्येक दशा में अग्नि को बुझा देती है, इस ब्रह्मांड में छोटा बड़ा कोई नहीं है, आप सूर्य का चक्कर लगाएंगी यही नियम है, सूर्य आपका चक्कर कैसे लगा सकता है, व्यर्थ की बकवास मत कीजिए, आप पुरुष हैं, पुरुष क्यों नारी को महत्ता देने लगे, आप अपने वर्ग का पक्षपात कर रहे हैं। देवी, मैं तो ईश्वरीय नियमों की बातें कर रहा हूं, वे नियम परिवर्तित नहीं होते, उनको परिवर्तित करने की सामर्थ्य ईश्वर के अतिरिक्त किसी में नहीं, इसमें वर्ग भेद की बात कहां से आ गई, ईश्वर कौन से महिला है, वे भी तो पुरुष ही हैं, इसी कारण उन्होंने इस ब्रह्मांड में इस प्रकार के अत्याचारी नियमों को स्थापित कर दिया है ताकि नारियां सदा सदा तक पुरुषों की दासता करती रहे, किंतु अब हम मूर्ख बनने वाली नहीं है, उन्हें नियम बदलना ही पड़ेगा, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, मैं सूर्य से बंधी हुई नहीं हूं। नारद ने सूर्य को समझाने का प्रयत्न किया किंतु वो भी अपने अहंकार में तना हुआ था। उसने कहा, ऋषिवर, यह पृथ्वी अब उद्दंड होकर मनमाना आचरण करने लगी है, ये नखरे अब सहन शक्ति के बाहर है, प्राणियों को यह जन्म नहीं देगी तो क्या मैं दूंगा, प्राणी मात्र को अपनी गोद में पालने का दायित्व इसका है, मैं निरंतर अपने शरीर को चलाकर इसे अन्न धन से पूर्ण करता हूं, मेरे तेज से ही इसका समस्त व्यापार चलता है और इसका यह अहंकार, मैं किसी प्राणी को जन्म कैसे दे सकता हूं, ऐसा नियम तो नहीं है। नारद जी ने घबराकर ईश्वर से प्रार्थना की कि वो इस विवाद को समाप्त करवाएं। ईश्वर को सूर्य के अहंकार पर भारी क्रोध आया, किंतु पृथ्वी की धृष्टता भी कुछ कम नहीं थी। वो तो उन नियमों को ही बदलने की बात कर रही थी जिसके सहयोग से सृष्टि चल रही थी। ऋण शक्ति धन शक्ति को शक्ति प्रदान करे या धन शक्ति गर्भ धारण करे, यह तो असंभव था। उन्होंने क्रोधित होकर चहलकदमी करना प्रारंभ कर दिया। वो सोचने लगे कि सूर्य के अहंकार ने विद्रोही की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी, तो पृथ्वी ने विद्रोह किया था, दोनों समान रूप से दोषी थे। उन्होंने घबराकर सोचा कि ये विवाद फैला तो भारी अनर्थ हो जाएगा, सभी जगह ऋण शक्ति विद्रोही हो उठेगी, इससे तो ब्रह्मांड का ही विनाश हो जाएगा। इसी समय लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित सी अंदर आई। उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ यह अत्याचार और अब मैं सहन नहीं कर सकती। आपकी सृष्टि में नारियों के साथ घोर अनर्थ हो रहा है। क्या हम लोग आप लोगों की दासता करने के लिए ही उत्पन्न हुई हैं? आज पृथ्वी को सूर्य से अपमान सहना पड़ा है, कल दूसरे ग्रह को किसी तारे से अपमानित होना पड़ेगा, परसों आप मुझे आग दिखाने लगेंगे। यह अन्याय अब सहन नहीं होगा। आज से अभी से मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी, ना ही आपके आदेश का पालन करूंगी। मेरा स्वतंत्र व्यक्तित्व है, मैं आपकी दासी नहीं हूं। क्या? ईश्वर ने हतप्रभ होकर लक्ष्मी को देखा, फिर घबराकर बोले, देवी देवी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हें सदा अपनी हृदयेश्वरी समझा है। प्रत्येक स्थान पर तुम्हारी पूजा पहले होती है, कभी तुम्हारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। पुरुषों का कोई भरोसा नहीं है, लक्ष्मी जी ने उपेक्षा से कहा। वे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और सामित्व प्रदर्शित करते हैं। पूजा भले ही मेरी पहले होती है, पर सभी के सामने मेरे स्वामी तो आप ही बने रहते हैं। लक्ष्मी के विद्रोह करते ही ब्रह्मांड के सभी ग्रहों ने अपने केंद्र के तारों का चक्कर लगाना बंद कर दिया। आकाश गंगाओं एवं निहारिकाओं ने भी चक्कर लगाना बंद कर दिया। गुरुत्वाकर्षण के बंधन से मुक्त होते ही व्यवस्था समाप्त हो गई। सभी केंद्रों के ग्रह मुक्त होकर भ्रमण करने लगे। केंद्र भी विभिन्न ग्रहों की नवीनता से विमुक्त उनको आकर्षण में बांधने का प्रयत्न करने लगे। अचानक ही ब्रह्मांड में भयानक विस्फोट होने लगे। ईश्वर सर पर हाथ रखकर बैठ गए। ये क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने घबराकर पूछा। तुम लोग अपनी मूर्खता का परिणाम देख लो, ईश्वर ने गंभीर होकर कहा। इस सृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं था, किंतु समान भी कोई नहीं था। जहां एक ही प्रकृति एक ही गुण के तत्व हो, वहां प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रतिक्रिया ही ना हो तो सृजन या विकास का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण मैंने स्वयं के ही स्वरूप को दो भागों में विभक्त करके उनमें विपरीत गुण भर दिए थे। तुम तो मेरा ही अंश हो, केवल स्वरूप एवं गुणों की भिन्नता है। यह सृष्टि के विकास के लिए आवश्यक था। तुम मेरा अंश ना होती तो मुझे लोग अर्ध नारीश्वर नहीं कहते। सृष्टि की व्यवस्था श्रम विभाजन के सिद्धांत पर बनाई गई थी। सोने का कार्य लोहा, लोहे का कार्य सोना कैसे कर सकता है? फूल से अस्त्र नहीं बनाए जा सकते और धातु से सुगंध तैयार नहीं होती। पृथ्वी ने विद्रोह किया और तुमने संपूर्ण अराजकता फैला दी। अब इस ब्रह्मांड का नाश हो रहा है। नियम विहीन सृष्टि कभी नहीं बन सकती, इसलिए मैंने कान पकड़ लिया है कि अब कभी सृष्टि का निर्माण नहीं करूंगा। जाओ, तुम भी अब मुझ में विलीन हो जाओ। दूसरे ही क्षण लक्ष्मी का स्वरूप परिवर्तित होने लगा और सृष्टि भी आत्म तत्व में परिवर्तित हो गई। अब अनंत तक केवल वो आत्म तत्व ही था, निराकार सच्चिदानंद परमात्मा, जिसमें न कोई विभिन्नता थी, न ही कोई प्रतिक्रिया हो रही थी।